Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mahapurushon ke pavan charanon mein naman karte hue Kathopanishad mein प्रथम वल्ली 26वां श्लोक शोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्यगीते नचिकेता वैराग्य के वचन बहुत ही प्रामाणिक रूप से व्यक्त कर रहे हैं। वैराग्य के बिना साधना संभव नहीं है। रास्ते में प्रलोभन बहुत हैं, जाना बहुत दूर है और रास्ते के प्रलोभनों में यदि हम अटक गए तो फिर हमारी यात्रा नहीं चलेगी और यही रास्ते के प्रलोभनों के बारे में सावधान कर रहे हैं। लक्ष्य हैं शाश्वत और प्रतिबंध हैं अशाश्वत। लक्ष्य हैं नित्य और प्रतिबंध हैं अनित्य। हम चाहते हैं नित्य आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को, और हमारी आसक्तियां अटका देती हैं असत्य में और आसक्ति के कारण अनित्य भी नित्य मालूम पड़ता है, असत्य भी सत्य मालूम पड़ता है। जो हमारी मंजिल नहीं है, जो हमारे लक्ष्य नहीं है, वे भी लक्ष्य की तरह मालूम पड़ने लगते हैं। हमारे जीवन में जो हितकर नहीं है, दुखद है, वह भी आसक्ति के कारण हितकर एवं सुखद मालूम पड़ने लगता है और यही कारण है कि हम उस असत्य में, दुखद वस्तुओं में अटक जाते हैं और हम अपने शाश्वत सत्य, सुखद सुखद स्वरूप लक्ष्य को छोड़ देते हैं। हमारी चाहत तो बहुत ऊंची है लेकिन बहुत छोटे छोटे प्रलोभनों में हम अपने ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। बहुत उच्च विचारों का व्यक्ति भी कई बार बहुत छोटे ही बातों में नष्ट हो जाता है। चाहत तो बहुत बड़ी है। आप ध्यान दें अपने ही जीवन पर, अपने ही विचारों में, भावनाओं में बहुत उच्च बातें हैं। हम बहुत ऊंची चीजें चाहते हैं लेकिन हम जीवन के स्तर पर बहुत छोटी बातों में उलझ जाते हैं, बहुत छोटी बातों में। हो सकता है कि हम बहुत छोटी चीज में उलझ गए हो, पुस्तक में उलझ गए, आग्रह दुराग्रहों में उलझ गए, किन्हीं विचारों में उलझ गए, वाद विवादों में उलझ गए और यहां तक कि हम थाली कटोरे में भी उलझ जाते हैं। आपके यहां मुंबई में होता नहीं होगा लेकिन गांवों में आप जाइए, थाली और चम्मच के लिए भाई भाई का सिर फोड़ देता है। चम्मच के लोग झगड़ा करते हैं, मेरा चम्मच तुम्हारे पास गया, तुम्हारा हमारे पास आया। आप अपने परिवार में भी देखिए, आप अखबार के लिए आदमी झगड़ा करता है, चैनल के लिए आदमी झगड़ा करता है, कौन चैनल क्या देखेगा। तो हम उच्च विचार रखते हुए भी आचरण में फिसल जाते हैं, बोलने में फिसल जाते हैं, शिष्टाचार में फिसल जाते हैं, बहुत छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, बहुत छोटी बातों में। आप बहुत गहराई से अपने जीवन पर विचार करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कहां विचारों की ऊंची उड़ान, बहुत ऊंची उड़ान, हम बहुत ऊंची चीज चाहते हैं लेकिन अटकते बहुत छोटी चीजों में, बहुत छोटी चीजों में। आदमी नौकरों से उलझ जाता है। अब कहां आप और कहां नौकर और उनके, बहुत छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, बहुत छोटी चीजों में। और ये छोटी चीजों में नहीं उलझने के लिए ही सुलझने के उपाय बता रहे हैं बालक नचिकेता। बालक नचिकेता कह रहे हैं कि जिन चीजों में हम उलझ रहे हैं वो क्या चीजें हैं, तो कहते शो भावा, माने वो चीजें बड़ी छोटी चीजें हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। मंदिर में जाना है और हम फुलवाले से उलझ गए, ये तो बहुत छोटी चीज है। हमें मंदिर में जाना है और जहां जूते रखे जाते वहीं उलझ गए, जहां हम उलझे बहुत छोटी चीज है। हमें मंदिर जाना है, गहरे शांति का अनुभव करना है, बहुत उच्च भावना में प्रवेश करना है और हम उलझ गए जूते वाले से, उलझ गए फूल वाले से, माला वाले से। इसलिए बालक नचिकेता कहते कि बहुत छोटी चीजें हैं और ये परिवर्तनीय है। आप संसार के लोगों को परिवर्तित होते हुए देखते हैं। अपना घर एक प्रयोगशाला है, अपने आसपास के लोग संसार को जानने के लिए लेबोरेटरी हैं। आप जान सकते हैं कैसे रूप बदलते हैं। जो आपका अपना व्यक्ति सुबह झगड़ा करता है, शाम तक रहता है कि वो झगड़ा बदल जाता है, और शाम को करता है तो सुबह नहीं रहता है फिर। इसलिए बालक नचिकेता कहते हैं कि उसमें हम उलझे क्यों, फिर हम झगड़े को पकड़ के क्यों रखे। झगड़ा भी शाश्वत नहीं है, उस समय उलझे नहीं, उसमें अटके नहीं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और जिनको हम विषय कहते हैं वे भी बदलते रहते हैं। ये शरीर सबसे बड़ा विषय है हमारे जीवन में, सबसे बड़ा विषय ये शरीर है। शास्त्र ने कहा कि विषय ये हमें बांध देते हैं, तो विषय क्या है? हम सोचते हैं संसार सागर कहां है वो। आपको कभी संसार सागर मिला क्या? जब हम बचपन में सुने संसार सागर तो मालूम पड़ता था कहीं दूर होगा, उसमें मगरमच्छ रहते होंगे और उसमें प्रवेश करने वाले को खा जाते होंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो संसार सागर क्या है, ये शरीर ही संसार सागर है। सबसे बड़ा विषय तो ये शरीर है, सबसे बड़ा विषय तो शरीर संबंधी पदार्थ हैं, और ये सारी चीजें बहुत नश्वर हैं, बदलने वाली हैं, मिटने वाली हैं। जिसमें हम आसक्ति कर रहे हैं वो सारी चीजें बदलने वाली हैं, वो कोई चीजें नहीं रहने वाली। हमारा सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा सुख देने वाला ये शरीर है, सबसे ज्यादा जिस पर हम भरोसा करते हैं, सबसे ज्यादा अपने पास रहता है 24 घंटे। आप अपने घर को छोड़ के रहते हैं, अपने पति पत्नी को छोड़ के रहते हैं, धन को भी छोड़ के रहते हैं, लेकिन कभी इस शरीर को छोड़ के रह सकते हैं? कभी ऐसा हुआ क्या कि आज हमने शरीर को घर में छोड़ा है और सत्संग में आ गए हैं? पैदा हुए से लेके अभी तक कभी एक क्षण का भी वियोग इस शरीर के साथ नहीं हुआ। इतना निकट और इतना प्रियतम, जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, शरीर के लिए सब कुछ छोड़ सकते, इतना प्रियतम निकट का ये शरीर, और ये शरीर भी साथ छोड़ रहा है कि नहीं? ये शरीर भी धीरे धीरे साथ छोड़ता जा रहा है। पहले दौड़ते थे दौड़ने वाले पैर, वो दौड़ने वाले पैर कहां गए? दौड़ने वाले पैरों ने साथ छोड़ दिया। ये हमारी आंखें कितनी बहुत छोटी छोटी चीजें देखती थी, इतनी सूक्ष्म, और उन्हें साथ छोड़ दिया। आपका तो दिमाग भी काम नहीं कर रहा है अभी पहले जैसे, उस दिमाग ने भी साथ छोड़ दिया। एक समय आएगा ये सारी चीजें हमारा साथ छोड़ के चली जाएगी। और इसमें हम क्यों रमे फिर, जमे क्यों, अटके क्यों, भटके क्यों? ये तो एक रास्ता, शरीर भी एक रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। ये शरीर भी एक रास्ता है, और रास्ता जो होता है ना वो अटकने के लिए नहीं होता, रास्ता तो चलने के लिए होता है ना। रास्ते का ही अर्थ है चलने के लिए, बैठने के लिए नहीं होता। और रास्ते में यदि बैठ गए तो वो फिर रास्ता कहीं पहुंचाएगा नहीं। ये शरीर भी ना ये रास्ता है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये साधन है धर्म का, आत्म तत्व को पाने का, परमात्म तत्व को पाने का, धर्म को जीवन में उतारने का। ये शरीर भी साधन है, आंख साधन है, कान साधन है, ये मन साधन है, बुद्धि साधन है, पैर साधन है, ये सारी चीजें जीवन की साधन है, अटकना नहीं है इसमें, लक्ष्य और है। इसलिए बालक नचिकेता कहते हैं कि ये शोभावा, इसका क्या भरोसा कल तक भी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसका क्या भरोसा? इसलिए जितना भी अच्छा कर्म करना है आज ही कर लेना चाहिए, कल तक नहीं टालना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं, सत्य ही कोई भरोसा नहीं है। शोभावा मर्त्यस्य यदंतक तत्, और ये मर्त्य है, स्वभाव का अर्थ होता है अस्थाई, कल तक होगा कि नहीं इसका ही भरोसा नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने कहा शो भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा इति संदिह्यमान एव एषां भावो भवनम ते स्वभावा, कल तक होगे कि नहीं इसका भी जिसका भरोसा नहीं है, दावे के साथ नहीं कह सकते हैं वो स्वभाव। और मरते हैं, मरने वाले मिटने वाले परिवर्तनशील हैं। और विषयों के बारे में कह रहे हैं सर्वेन्द्रियानाम जरयंति तेजः, हम विषयों का भोग करते हैं और वे विषय हमारा भोग करते हैं। हम विषयों को भोगते हैं और भोगते समय हमारी इंद्रियां भी जर्जर हो जाती हैं, हमारी इंद्रियां भी जर्जर हो जाती हैं, हमारी इंद्रियां भी भोग विलास में बूढ़ी हो जाती हैं। भर्तृहरि ने एक बड़ा सुंदर वचन कहा है नीति शास्त्र में, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न यातो वयमेव याता। हम कहते हैं कि भोगों को हम भोग रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से आप देखें भोगों को हम भोग रहे हैं कि भोग हमको भोग रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन वो खाना भी हमको खा रहा है। हम देख रहे हैं, लेकिन हम देखने का भोग हम स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो सामने वाला भी हमको भोग रहा है। आप कोई भी देखना, कोई भी चीजें, खाना, उठना, बैठना, ये सारे जो भोग हैं, ये सारे भोग हमको भोगते हैं, हमारे जीवन की अमूल्य ऊर्जा का क्षरण कर देते हैं, हमारी ऊर्जा वहां पर नष्ट होती है। यही तो भोग है और क्या है? भोग का अर्थ क्या है? जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने का अर्थ है थाली में आपका भोजन कम होता जा रहा है। आपकी चार रोटी थाली में है और चार की चार है, तो आप भोजन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप भोजन करना तब मालूम पड़ते हैं जब चार रोटी थी तो साढ़े तीन रह गई, तीन रह गई, दो रह गई, तो आप भोजन कर रहे हैं, आप भोजन को खा रहे हैं। माने अवशेष आप रह जाए और भोजन समाप्त हो जाए तब समझ लेना चाहिए कि भोजन आप कर रहे हैं। लेकिन आप देखना, आप अवशेष रहते नहीं कि भोजन अवशेष रह जाते हैं, सारा भोजन वहीं पड़ा रहता है, आदमी चला जाता है, किसने किसको खाया, सारे भोग जहां के वहीं रह जाते, कभी वो पूरे होते हैं क्या? और अंत में शरीर चला जाता है। कालो न यातो वयमेव याता, हम कहते हैं कि काल निकल जा रहा है, समय निकल जा रहा है, लेकिन समय जा रहा है कि हम जा रहे हैं? हम बीत रहे हैं, समय बीतता नहीं, बीतने की क्रिया जाने की क्रिया, आने जाने की क्रिया काल में नहीं है। काल न कहीं आता है और न जाता है, जहां का वहीं है। ये बीतने की जो प्रक्रिया है वो काल की नहीं है, ये हमारी इस तन की है। हम बीतते जा रहे हैं, एक एक क्षण हमारे जीवन का, हमारे जीवन के अस्तित्व का कम होता जा रहा है, एक एक क्षण कम होता जा रहा है। हमारी 100 वर्ष की आयु है और आज का दिन निकल गया, आज का दिन कम हुआ है। हम कम हो रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं? आप क्या करते, वाढ़ दिवस मनाते हैं कि नहीं? ये सचमुच वाढ़ दिवस है कि घट दिवस है? घट दिवस। आप वाढ़ दिवस मनाते हैं बहुत गौरव से, बहुत गौरव से वाढ़ दिवस मना रहे हैं। वाढ़ दिवस आदमी सोचता है कि वाढ़ दिवस है आज, और बड़े गौरव से सबको आनंद मनाते हैं, और लोगों को खिलाना पिलाना, उपहार देना लेना। वस्तु स्थिति में ये जो वाढ़ दिवस है, ये आनंद मना के लेने का है कि दुख मना के देने का है? ये तो घटने का दिन है, माइनस का दिन है, इसलिए आपको लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए भैया, दान करो। भाई आज का दिन है, बहुत दुखद घटना है, एक वर्ष हमारा कम हुआ, अभी आनंद क्या मनाना है? चलो थोड़ा सा हिसाब किताब देख ली कि भैया इस साल हमने क्या क्या किया, गए हुए बीते हुए दिन, बीते हुए वर्ष का हमने क्या उपयोग किया। जो आपके पास एक वर्ष था वो कम हो गया है, और इस एक वर्ष का लेखा जोखा क्या है, हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उस समय हमें कुछ नए करने का संकल्प लेने का दिन, लेकिन हम लोग वार दिवस मनाते हैं, लेकिन है वो घटने का दिन। बालक ने चिकेता यही तो कह रहे हैं, भर्तृहरि यही तो कह रहे हैं, कालो न या तो वयमे वयाता, काल तो नहीं गया, काल तो नहीं बीता, लेकिन हम ही बीते जा रहे हैं। बालक ने चिकेता कह रहे जरयंती तेजा, ये विषय हमारे तेज को खा जाते हैं, हमारी ऊर्जा को खा जाते हैं, हमारी युवा शक्ति को बुढ़ापे में बदल देते हैं। इसीलिए साधक लोग विषयों को बोलते हैं, विषयान विषवत त्यजा, इन विषयों का विष की तरह त्याग करो। साधकों के लिए, ऊंचे विचारों वाले व्यक्ति के लिए, इनमें फंसकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट नहीं करना है। जरयंती तेजा, जरयंती का अर्थ होता है यहां बुढ़ापे में ले जाते हैं, ये विषय हमें बुढ़ापे में ले जाते हैं। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, ये जो जीवन है ना बहुत अल्प है, हम अपने आप को अल्प नहीं समझते। अच्छा, अल्पता का बोध आपको भी होता होगा, आप अभी 50 साल के हैं, 55 साल के हैं, तो आपका 55-50 साल का समय आप अतीत को देखना कैसे गया, आपने को लगता है कि नहीं? अरे 40 साल गुजर गए, एक क्षण की तरह लगता है। आपके 50 साल गुजर गए, 70 साल गुजर, एक क्षण की तरह मालूम पड़ता है आपको, लंबा नहीं मालूम, अतीत आपको लंबा मालूम नहीं पड़ता है, एक क्षण की तरह मालूम पड़ता है, ऐसा गुजर गया है। ये कह रहे आपिक जीवितम अल्पमेव, जो जीवन है ना बहुत ही अल्प जीवन है, और इस अल्प जीवन में ही सब कुछ करना है अपने को, सब कुछ करना है। बालक नचिकेता कहना चाहते कि इस अल्प जीवन को हम सत्य के काम में उपयोग में लाए, और न तो ये अल्प जीवन चला जाएगा, जैसे शास्त्रों में कई जगह पर उदाहरण दिया, वो बुलबुला होता है ना, वो जल के अंदर जो उठता है बुलबुला, एक क्षण उठता है दूसरे क्षण खत्म हो जाता है, जीवन इसी प्रकार है। परम पूज्य महाराज श्री ने एक बड़ी सुंदर बात की, अनंत देश और अनंत काल, अनंत देश और अनंत काल की दृष्टि से देखो हमारा जीवन कितना बड़ा, ये अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, और उस अनंत अंतरिक्ष में हमारा सौरमंडल छोटा सा है, और सौरमंडल को आप देखो बहुत बड़ा, और उसके दृष्टि से हमारी पृथ्वी बहुत छोटी सी, इतनी बड़ी पृथ्वी और उसके दृष्टि से भारत देश, बहुत छोटा। और भारत में, बहुत बड़े भारत में आपका महाराष्ट्र बहुत छोटा, और आपके बहुत बड़े महाराष्ट्र में आपकी मुंबई बहुत छोटी। आपके मुंबई के दृष्टि से प्रेमपुरी आश्रम बहुत छोटा, और इतने बड़े प्रेमपुरी आश्रम में आप जहां बैठे वो बहुत छोटी चीज है। आप अनंत की दृष्टि से देखेंगे तो हम कहां हैं? आप अनंत की दृष्टि से देखेंगे तो हमारा अस्तित्व, हमारा होना एक सागर में एक बूंद की तरह भी नहीं है, बूंद का भी एक हिस्सा समझ लो। और अनंत काल की दृष्टि से आप देखो, ये अनंत काल है। कितना अनंत काल है? करोड़ों वर्ष, करोड़ों करोड़ों वर्ष पुराने ये नक्षत्र तारांगन, और उसमें हमारा 50 साल 100 साल कोई मायने रखता है? 50 100 साल बहुत। और इसलिए बालक नचिकेता ने धान की तरह बोला है, धान की तरह इस जीवन को, सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। ये जो शरीर है ना, ये जीवन, ये जीव, ये सस्य की तरह, धान की तरह पकता है, धान की तरह पकता है। क्या करता है? एक दो जीवन पैदा कर लेता है फिर मर जाता है। जैसे पौधा क्या करता है, धान क्या करता है? धान को पैदा करके धान मर जाता है। चना चने को पैदा करके चना क्या होता है? फिर खत्म हो जाता है ना पौधा। चने को पैदा करके चना खत्म हो गया, पौधा खत्म हो गया, इसलिए धान बोलते हैं उसको। एक ही बार पकता है वो, एक ही बार फलता है वो। आप कोई भी देखें, जैसे वट का वृक्ष है, वो एक बार धान फल देके खत्म नहीं होता है वो, लंबा चलता है वो। लेकिन धान का मतलब होता है एक बार फल दिया और खत्म हुआ। और ये हमारा भी जीवन है ना, वैसा ही है जीवन, हमारा भी जीवन वैसा ही है। आपको कुछ मिलता है ऐसा लगता है, और मिलते मिलते शरीर भी नष्ट होता जाता है, जीवन खत्म होता जाता है। इसलिए कहते कि शरीर ये, और ये जीवन, ये भावनाएं और वो विचार, ये सब अल्प में, बहुत अल्प में। और इस अल्पता में ही हम अपनी जीवन को लगा देते हैं, आसक्तियों में हम जीने लगते हैं, हम अपने विचारों में अटक जाते हैं। हमें सबसे ज्यादा अटकाने वाली चीजें जो है ना, ये हमारे विचार ही हैं। आप ध्यान देना, ये जो बोल रहे हैं ना, उसका प्रयोजन है, इसका प्रयोजन यही है कि हम इस नश्वरता को समझ लें और हम अटके नहीं, हम अपने विचारों में भटके नहीं, आग्रह दुराग्रहों में अटके नहीं। हम अपने विचारों में अटकते हैं कि नहीं? कई बार आप झगड़ा करते हैं कि नहीं? आप बोलते हैं ऐसा है, सामने वाला बोलता वैसा नहीं है, बस हमारे विचारों में अटकाव है, हम अपने ही विचारों में बंधे हुए होते हैं। इसलिए विचार सत्य नहीं, विचार तो एक सीढ़ी है। वो सत्य तक पहुंचने के लिए विचार क्या है? एक सीढ़ी है। वो हमारी जीवन का लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है। विचारों का संकलन, विचारों का एकत्रीकरण, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये विचार भी हमें निर्विचार में जाके इनको भी छोड़ना पड़ता है। अंतिम जाने के बाद, अंतिम लक्ष्य में प्रवेश करने के बाद विचार भी छूट जाते हैं, एक सीढ़ी है। हम जब ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी छूट जाती है कि नहीं? आप अपने मंजिल पर चल रहे हैं, आप ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों से, आप ऊपर जाने के बाद सीढ़ी छूट जाती है कि नहीं? वो तो माध्यम थी ना, आप ऊपर गए सीढ़ी छूट गई। विचार भी हमारे माध्यम है, और जैसे सत्य में प्रवेश करते हैं तो विचार छूट जाते हैं। इसलिए श्रुति कहती है तत्र वेदा अवेदा भवन्ति, वेद भी अवेद हो जाते हैं। वहां वेद को भी छोड़ देना पड़ता है, उस निर्विकल्प आत्म तत्व के बोध में प्रवेश करने के बाद सारे विचार, चाहे वेद के विचार हो चाहे वेदांत के विचार हो, सारे विचार रह जाते हैं, वो सारे विचार छूट जाते हैं। इसलिए ब्रह्म को बोलते ना निर्विचार, निर्विकल्प है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो। आप घोषणा करते कि मैं निर्विकल्प हूं, और आप निर्विकल्प हैं तो वहां विचारों का कहां, विकल्पों का कहां स्थान है? इसलिए विकल्प और विचार नारायण ये आज की चीजें हैं, रास्ते की चीजें हैं, वहां अटकना नहीं है। विचारों में झगड़े नहीं करना है, वाद विवाद पैदा नहीं करना है। दो आदमी लड़ते हैं झगड़ते हैं किस लिए? वो बोलता है कि गीता में ऐसा लिखा है, वो कथा नहीं लिखा है। इसमें भी झगड़ा करता है आदमी, आदमी गीता और रामायण में भी झगड़े करता है, लेकिन स्वयं गीता और रामायण कहती कि तुम झगड़े मत करो क्योंकि हम भी वास्तविक नहीं है। वेद भी बोलता है तत्र वेदा अवेदा भवंती का मतलब क्या है, आप तत्व बोध में प्रवेश करने के बाद वेद भी छूट जाते हैं, वेद भी वेद के दिव्य विचार भी अपने स्थायित्व की घोषणा नहीं करते हैं, अंतिम सत्य होने की घोषणा नहीं करते हैं। वो कहते अंतिम सत्य तो परमात्मा है और वहां प्रवेश करने के बाद हमको भी छोड़ना पड़ेगा आपको, ये वेद कह रहे हैं। फिर हम विचारों में झगड़ा क्यों करें, हम अपने विचारों में आग्रह दुराग्रह क्यों रखें, वस्तुतः हम विचारों में अटक जाते हैं ना, वो विचारों के कारण नहीं अटकते हैं, हमारे अभिमान के कारण अटकते हैं। आप क्या सोचते हैं हमने बोला इसलिए सही होना चाहिए, हम गीताजी में कहा इसलिए सही होना चाहिए ऐसा सोचते नहीं है, हम क्या कहते हमने बोला इसीलिए सही होना चाहिए, वो हमारा आग्रह हमारा दुराग्रह हमारा अभिमान है हमारा अहम है और इसको छोड़ना है, ये भी अल्प है ये जीवन का अंग है। इसलिए बालक नचिकेता कहते कि संपूर्ण जीवन और वो जीवन की क्रियाएं प्रक्रियाएं भावनाएं विचार ये सारी चीजें नारायण अल्पमेव जीवितम अल्पमेव, और इसीलिए कहते कि तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये सारी चीजें जो तुम्हारी है ना तुम्हारी बोले तवैव तुम अपने पास रख लो, तवैव वाहा तव नृत्य गीते ये सारी चीजें तुम अपने पास रख लो, ये चीज जो है ना परम वैरागी की चीज है। बालक नचिकेता कहती ये सारी चीजें तुम अपने पास रख लो, ये बोलने का जो ढंग है ना ये बोलने का ढंग सिद्ध करता है कि उनके मन में कितना वैराग्य है। जैसे आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और आपको रोटी चाहिए, आपको रोटी चाहिए, एक रोटी आप खा सकते हैं,